याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
ओम शांति। हम आपसे जो आज का मुझे विषय दिया गया है, बचत का खाता कैसे जमा हो, व्यर्थ से कैसे मुक्ति हो, आप सभी बहुत पुराने कई इस ग्रुप में अनुभवी भाई हैं जो काफी समय से अपनी बचत बैंक बनाते आ रहे हैं, बहुत सेवाएं कर रहे हैं, ज्ञान और योग के बहुत अच्छे अनुभव हैं। इस बार बाबा की मुरलियों में ये विशेष अंडरलाइन बाबा ने कराई है कि अपने दिल की ऑफिस में चेकिंग की मशीनरी सेट कर लो और चेक कर लो कि जमा का खाता कितना है, कितनी बचत की हुई है सर्व खजानों की। बाबा के द्वारा हम सभी बच्चों को हर प्रकार के खजाने प्राप्त हुए हैं, ज्ञान और योग की बहुत अच्छी पालना मिल रही है, लेकिन जब परिवार बढ़ता है तो परिवार की जुम्मेवार आत्माएं बचत का बहुत ध्यान रखती हैं और हम सभी जिन्हें बाबा ने निमित्त रूप में अपनी सेवाओं में राइट हैंड बनाया है, हम अपनी शक्तियों को, अपने खजानों को कहाँ तक सफल कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर ये खजाने व्यर्थ जा रहे हैं, इसकी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने का ऐसी एकांत की भट्टियों में बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होता है। क्या जितनी कमाई है उतना ही खर्च है, कमाई अधिक है खर्च कम है, या जितनी कमाई है उससे अधिक खर्च है? सबसे पहले हम अपने खजानों को चेक करते हैं, अमृत वेले से लेकर के श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जो शुद्ध सकारात्मक चिंतन से, अच्छे विचारों से हम जमा करते हैं। बाबा के वरदानी बोल जो हम बच्चों को मिले हैं उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मुरलियों का गहराई से अध्ययन करते हैं, खजाने जमा होते जाते हैं। लेकिन वो खजाने कभी कभी अधिक खर्च कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पर अधिक खर्च होते हैं और कैसे बचत की जाए, उसकी क्या योजना है हमारे पास, कुछ एक अच्छे अनुभव भी हैं, क्योंकि संकल्पों को अगर हम महीनता से चेक करते हैं तो जितनी गति संकल्पों की फास्ट चलती है उतनी संकल्प की शक्तियां नष्ट होती हैं। अगर हमारे संकल्पों में धैर्यता है, उस पर हमारा नियंत्रण है, समय पर हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं या मोल्ड कर लेते हैं, तो संकल्प की शक्ति जमा हो जाती है। और वो संकल्प जिसके द्वारा हम सबको बहुत बड़ी सेवाएं करनी है, वो शक्ति कहाँ तक जमा की है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति संकल्प की शक्ति है, समय की भी शक्ति है, गुणों की भी शक्ति है, ज्ञान की भी शक्ति है। जो भी संगम युग पर बाबा ने खजाने दिए हैं, वो सब शक्ति के रूप में हम सबके पास हैं। लेकिन कई बार जब हम प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तो ये जमा हुई शक्तियां बहुत फास्ट गति से नष्ट होती हैं और हम अपने आप को खाली खाली महसूस करते हैं। बाबा ने इतना भरपूर किया है और हर आत्मा यथाशक्ति अपने आप को भरपूर कर रही है, लेकिन खर्चा अधिक है, तो वो शक्तियां समय पर ऐसा महसूस कराती हैं कि नहीं है हमारे पास, होते हुए भी पता नहीं चलता कि शक्ति है। तो सबसे पहले अगर हम ये बात थोड़ा ध्यान से सोचते हैं कि ये शक्तियां नष्ट किन किन बातों से होती हैं, जमा कैसे होंगी, उसकी विधियां हम आप सब जानते हैं। बाबा हमें जमा करने की ही अनेक युक्तियां बताते रहते हैं, लेकिन अगर हम किन्हीं भी विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं, समय पर विघ्नों को पार करने की युक्ति बुद्धि द्वारा निर्णय नहीं कर पाते और उन विघ्नों में उलझ जाते हैं, हमारी स्थिति निर्विघ्न नहीं रहती, तो विघ्नों के कारण बहुत सी शक्तियां नष्ट होती हैं। जब आत्मा अपनी निर्विघ्न स्थिति में रहती है, विघ्न भले कई प्रकार के आते हैं, लेकिन उन विघ्नों को समझ करके ज्ञान और योग की शक्ति से अगर हम सहज पार कर लेते हैं, तो हमारी बहुत सी शक्तियां बच जाती हैं। अब उन विघ्नों को जो बार बार व्यक्तियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा या अपने ही कई संस्कारों के द्वारा समय प्रसमय इमर्ज हो जाती हैं, उन विघ्नों को, उन परिस्थितियों को परख कर श्रीमत के तराजू से अगर बुद्धि की स्वच्छता है, समय पर ठीक निर्णय कर लेते हैं, तो अनुभव ये कहता है कि हम उन विघ्नों को बहुत सहज पार कर लेते हैं, क्योंकि व्यर्थ की उत्पत्ति का एक ही दरवाजा बाबा ने हम सबको सुनाया है। जब कोई बात आती है और उसमें हमारे प्रश्नों की क्यों लग जाती है, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे भी होता है, तो बहुत सी शक्तियां इसी व्यर्थ के संकल्पों में नष्ट होने लगती हैं। और अगर हम फुलस्टॉप लगाना सीख लेते हैं, बाबा हम बच्चों को जो इतना सुंदर ड्रामा का ज्ञान देता है, हर आत्मा के पार्ट का ज्ञान देता है, अपने पार्ट का ज्ञान देता है, हम सब के पार्ट को देखते और जानते हुए फुलस्टॉप लगाना सीख लेते हैं और बीच बीच में अपने संकल्पों को ये ब्रेक दे देते हैं, नथिंग न्यू, तो ये संकल्प की शक्ति व्यर्थ जाने से बच जाती है और ये बहुत समय पर काम करती है। अगर संकल्प हमारे बहुत फास्ट गति से चलते हैं, कोई सीन देख करके, कोई दृश्य देख करके कोई बात हो जाती है, घट जाती है और उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो जमा की हुई शक्तियां बहुत जल्दी जल्दी फास्ट गति से नष्ट होने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने संकल्पों को बचाने की जरूरत है और इसके लिए चेक करना पड़ता है कि किन किन परिस्थितियों में हमारे संकल्प फास्ट गति के चलते हैं। दूसरी बहुत बड़ी शक्ति जिसको बचाने का एक साधन बाबा ने हम सबको बताया है, वो है बोल की शक्ति। बहुत बोलने से, अधिक वार्तालाप में आने से ये शक्ति क्षीण होती है। बाबा ने इसे एनर्जी का नाम दिया है। ये एनर्जी है आप सबके पास बोल की और संकल्प की। इसे इकट्ठा करो, इसे जमा करो, ये समय पर काम आएगी। क्योंकि बहुत बड़ी जब कोई समस्याएं आने वाली होती हैं, परिस्थितियां आने वाली होती हैं, तो उसके पहले अपने स्टॉक को चेक करना होता है। तो हम सब भी जानते हैं सृष्टि की तमो प्रधानता की स्टेज और इसके विनाश के भी दृश्यों को हम सब सुनते और जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां होंगी, उस समय हमें किन स्थितियों में रह करके मनुष्य आत्माओं को सहारा देना, साथ देना, शक्ति देना होगा। तो उसके लिए हमने कहां तक अपने संकल्प और बोल की शक्ति को जमा किया है। बोल की शक्ति को जमा करने के लिए बाबा हम सबको कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, आवश्यक जितना है उतना बोलो। तो इस बात को आप सभी अपने कर्म क्षेत्र पर रहते हुए ध्यान रखते ही होंगे कि कहां तक हमारे बोल समर्थ बोल होते हैं, क्योंकि संकल्प के बाद बोल का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। जैसे वृत्तियों द्वारा वायुमंडल क्रिएट होता है, हमने संगठन में देखा है कि वृत्तियों से भी अधिक जल्दी वायुमंडल बोल से बनता है। अगर एक बात छोटी सी किसी को बोल दी जाती है और वो बोल फैल जाते हैं वायुमंडल के अंदर, तो उसी समय वायुमंडल भारी भारी महसूस होने लगता है। छोटी सी बात वायुमंडल में फैला दी गई। इसलिए ये दो शक्तियां अगर हम सबके पास जमा हैं, तो बहुत सा समय हमारा अपने आप बच जाता है। क्योंकि संगम युग पर समय भी बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा खजाना है। और सबसे बड़ी भाग्यशाली आत्माएं वो हैं जिन्हें संगम पर सेवाओं का चांस मिलता है। हम कहते हैं अगर संगम पर किसी को सजा देनी हो तो उन्हें सेवाओं से छुट्टी दे दो, और जिनके पास सेवाएं नहीं हैं वो कहें मेरे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, मैं तो बहुत अच्छा अपने आप को अपनी ऊंची स्थिति में रखता हूं, असंभव सा लगता है। क्योंकि सेवाएं, जिसको बाबा ने कहा है बच्चे तुम अपने आप को विजी कर दो, और अगर यंग एज वाली आत्मा है, जो हमारे ये समर्पित भाइयों की एज है, नए नए सेवाधारी जो हैं, विशेष करके अगर ये अपने आप को सेवाओं में विजी न करें तो संकल्पों पर सहज रीति से कंट्रोल करने में बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल है। इसलिए सेवा भी एक माध्यम है, जितना जो बिजी रहे, जिस प्रकार की सेवा में बिजी रहे, उतना वो अपने आप को, अपने संकल्पों की शक्ति को, बोल की शक्ति को बचा सकता है। अंदर की शारीरिक और मानसिक शक्तियां जो हमारी समय प्रसमय नष्ट होती हैं, अगर हम सेवाओं में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं तो ये बहुत सी शक्तियां हमने अनुभव से देखी हैं बचती जाती हैं, क्योंकि व्यर्थ बोलने से, व्यर्थ संग में आने से, फ्री रहने से, समय की कदर न होने से हमारी आंतरिक शक्तियां बहुत नष्ट होती हैं। इसलिए जिस प्रकार हम सबका ध्यान अपने बोल पर रहना आवश्यक है, संकल्प पर आवश्यक है, ऐसे ही हमारा समय भी कहीं पर व्यर्थ न जाए, किसी भी प्रकार से व्यर्थ न जाए। जितनी भी सेवाएं हम सबको मिले और जिस प्रकार की सेवाएं मिले, हमें एक बात का बहुत गर्व रहता है मधुबन में रहते हुए कि बाबा ने मधुबन में हम सबसे जो पुराने आए हैं उन सब से हर प्रकार की सेवाएं कराई हैं, और ऐसी ऐसी सेवाएं कराई हैं जो आज जो समर्पित होते हैं उन्हें कहा जाए करो तो कहेंगे मैं इस सेवा के लिए आया हूं क्या। जैसे शुरू शुरू में आप सबने देखा होगा जो पुराने भाई बहने हैं, हम सभी 13 वर्ष तक मधुबन में धोबी घाट की सेवा करते थे, कपड़े छटने की। और वो सेवा ऐसी थी जिसमें पूरे ही देहमान का त्याग करना पड़ता है, और कोई अच्छे घरों से आए हुए हों, परिवार में बहुत लाड़ प्यार से पले हुए हों, ऊंचे घराने के हों, कुछ उनको अपना लौकिक का कोई नशा हो, कोई पढ़ाई का नशा हो, मैं समझता हूं ऐसी सेवाओं में उन्हें थोड़ा सा देहाभिमान आ सकता है। और बाबा ने हम सबसे मधुबन में पहले पहले यही सेवाएं कराई और उसी में ही विजय किया, चाहे वो रोटी बनाने की थी, चाहे पानी पहुंचाने की थी, चाहे झाड़ू लगाने की थी, क्योंकि मजदूर मधुबन के अंदर नॉट लाओ, कोई आ ही नहीं सकता था। अनाज हो, घर के बच्चे संभालेंगे, यही रखेंगे, दूसरा कोई देखे भी नहीं, दृष्टि भी नहीं पड़े। धोबी घाट चाहे वो 100 का हो, चाहे 500 का हो, सब कपड़े खुद ही भट्टी चढ़ानी है और धोना है, एक जगह पानी गर्म होगा, सुबह 4 बजे से सबके पास पहुंचाना है। और कितने भाई रहते थे समर्पित, केवल 15 और 20। तो बाबा ने इन कर्मिंद्रियों से इनको पावन बनाने के लिए, कहते हैं योग की मेहनत कई बार होती है, कई बार नहीं होती है, कई बार योग सहज लगता है, मेहनत का अनुभव कराता है, लेकिन अगर कोई अपने आप को, अपनी कर्मिंद्रियों को शीतल बनाना चाहता है तो उसका बहुत अच्छा माध्यम है सेवाएं। और जितनी जो प्रकार, जिस प्रकार की सेवाएं मिले, चाहे नीच, माना नीच तो नहीं कहेंगे यज्ञ की सेवा, लेकिन कोई भी सेवा हो, झाड़ू लगाने की हो, घर की सफाई की हो, या हमें कोई ऑफिस की सेवा मिल जाए, और वो सेवा करते हुए भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहे, कोई भारीपन से हम सेवा कर रहे नहीं। हमें तो एक अनुभव ये है कि कभी ये संकल्प भी नहीं आया कि ये सेवा मैं करूं, जबकि अनुभव में ये था कि मैं लौकिक में अपने परिवार में अकेला बच्चा था, 3 के बीच में, 3 पिता भाई, 3 भाइयों के बीच में मैं अकेला इकलौते था। और आते ही सबसे पहले 71 में मुझे दीदी ने, दादी ने यही सेवा में पहले कहा कि धोबी घाट में सेवा करो। धोबी घाट हो या बिस्तर उठाने की सेवा हो, या पानी पहुंचाने की सेवा, या झाड़ू लगाने की, या अनाज साफ करने की, रोटी पकाने की, अभी तो गैस के चूल्हे हैं, सब प्रबंध है, लेकिन उस समय मधुबन में वही जैसी सिस्टम पहले थी, लकड़ियां, बरसात खूब होती थी और लकड़ियां एकदम गीली और उन पर रोटी बनानी है, खाना बनाना है, तो थोड़े से भाई भी समर्पित होकर के बहुत प्यार से और दिल से सेवा करते थे। तो अनुभव में हमने देखा है कि बहुत सी बातों से, ऐसी सेवाएं करने से हम सब सहज ही मुक्त होते गए, देह अभिमान छूटता गया, और ये सेवाओं ने जो बल दिया, जो शक्ति दी, वो बहुत सी व्यर्थ बातों से हमें मुक्त रखा। और अनुभव से आज हम बड़े बेहद परिवार में देखते हैं, सब प्रकार के साधन हैं, सुविधाएं हैं, देने वाले करने वाले अनेक आ गए हैं, इकोनॉमी समाप्त होती जा रही है, एक और बाबा हम सबको कहता है कम खर्च वाला नसीन बनो, एकानामी के अवतार बनो। ये बचत के तरीके बाबा हम सबको सुनाता है जिससे तुम्हारा धन बच जाए। मेहनत खुद करो, दूसरों से सेवा लेने की बजाय, तो तुम्हारा धन बच जाएगा। और वो समर्पित जीवन में कोई कमा करके धन लगा रहे हैं और कोई समर्पित होकर के बचा करके धन लगा रहे हैं और कोई उस धन को दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर हम सब का ध्यान इस खजाने पर भी हो कि बाबा के यज्ञ का एक एक दाना, एक एक पैसा बहुत अमूल्य है और इसको हम जितना बचा सकें, इसके बारे में भी एक छोटा सा अनुभव मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्लासेस कराने वाले भाई मुझे पता है इस ग्रुप में बहुत हैं, अच्छे अच्छे क्लासेस कराते हैं। लेकिन अनुभव एक बहुत बड़ी चीज है और उस अनुभव से अपनी सेवाओं में रहते हुए कैसे हम एकानामी करके चल सकते हैं। भले सब उपलब्धियां बाबा ने करा दी हैं और जितना जो जिस डिपार्टमेंट में खर्चा करना चाहे, जिस प्रकार के साधन रखना चाहे वो रख सकता है, छुट्टी है। लेकिन जो पुराने हैं, जो यज्ञ के रक्षक बन करके यज्ञ को संभाल रहे हैं, कईयों के अनुभव में आपको सुनने को मिलेगा। विशेष हम अपने डिपार्टमेंट की बात आपको बताते हैं। जब हमें तीनों स्थानों पर फोटोकॉपी का डिपार्टमेंट संभालने को मिला, कंप्यूटर और फोटोकॉपी का, हमें कहा गया कि आप अच्छे से अच्छी मशीन रखो, बहुत सेवाएं हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम होंगे यहाँ पर, राय दी गई। और हम जब इंक्वायरी पर निकले तो मशीन की कीमत 8 लाख 9 लाख, इसे कम कोई मशीन नहीं मिलती है, अच्छी मशीन अगर हमको लगानी है तो। और बड़ों से अगर हम कहते हैं कि इतनी हमारे पास सेवा है तो भी हमें मना नहीं कर सकते, कहेंगे हाँ सेवा है तो लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम समझते हैं कि नहीं, इस सेवाओं को, इस धन को हम बचा सकते हैं, तो हमने क्या किया, इस अनुभव से आपको हम बताते हैं। जब हम शुरू शुरू में ज्ञान सरोवर बना या शांति वन बना और यहाँ पर बहुत बड़ी मशीनों की डिमांड आई, हमने इंक्वायरी किया कि विदेश की सेकंड हैंड मशीनें भी इंडिया में बहुत अच्छी चलती हैं और जो इंडिया की कंपनियां 8-9 लाख में बेचती हैं, वो सेकंड हैंड मशीनें यहाँ 1 लाख रुपए में बहुत अच्छी कंडीशन में 70-80 हजार में भी मिल जाती हैं। और ये बचत जब हम इंक्वायरी करते हैं, पता चलाते हैं, तो पता चलता है कि बहुत कुछ हम इसमें बचा सकते हैं। हमने कहा हमें 8 और 9 लाख खर्च नहीं करने, हम तो 3 लाख में 3 मशीनें लगाएंगे और तीनों स्थानों पर लगा करके इस कार्य को हम चलाएंगे, देखेंगे क्यों नहीं चलेगा। और आज 4 साल से, जब से ज्ञान सरोवर शांतिवन बने हैं, खूब सेवाएं हो रही हैं और वही मशीनें सेवाएं कर रही हैं। अगर हम 1-9 लाख की मशीन लगा देते तो हमें 3 जगह की सोचना पड़ता और तीनों जगह 27 लाख रुपया खर्च करके लगाना पड़ता। और अगर वो 3 लाख में लग गई और हम उसको ठीक तरह से संभालते हैं तो हम कहते हैं ये भी हमारी गुप्त धन की सेवा बाबा के यज्ञ में समर्पित होती है। तो हम सब यज्ञ के रक्षक बच्चे धन को भी बचाएं और धन को जितना कम से कम खर्च करके बाबा की सेवाओं के लिए है, क्योंकि साकार में बाबा ने हर प्रकार से हम सबको न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा ये ट्रेनिंग दी। कहते हैं अच्छी चीज लो एक बार लो, कहते सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, कहावत है। लेकिन बाबा ने भी ये पद्धति नहीं रखी यहाँ पर कि बहुत ऊंची चीजों में अपना खर्चा कर दो और खराब हो जाए तो उसके पीछे और भी समय एनर्जी शक्तियां नष्ट हों। अगर बीच की चीज है तो उसको हम सहज ठीक भी कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। ऐसे बहुत से अनुभव हैं, डिपार्टमेंट चलाने में भी बहुत से अनुभव आते हैं कि कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा काम हम दे सकें, अच्छी सेवाएं दे सकें, अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग यज्ञ में दिया जा सकता है, ये भी एक बचत योजना है। लेकिन समय पर हमारी बुद्धि को ठीक टचिंग आना आवश्यक है और उसके लिए बाबा का एक वरदान स्मृति शुरू शुरू में मिलते वरदान का, बच्चे तुमने अपनी बुद्धि को कहीं भी व्यर्थ नहीं गंवाया है और जो तुम्हें साधन मिले इनका अच्छा प्रयोग किया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि को वरदान मिलता जा रहा है और जो चाहो वो समय पर कर सकेगी। तो अगर हम सब में ठीक ठीक निर्णय करने की शक्ति और बुद्धि समय पर ठीक निर्णय दे तो हम अपनी इस शक्तियों को बचा सकते हैं। इसलिए बचत योजना में बहुत कुछ प्लानिंग है। बाबा कहता है अपना ऐसा चार्ट रखो, ऐसी अपनी एक दैनिक दिनचर्या बनाओ कि हमें कहाँ कहाँ अपने संकल्पों को खर्च करना है, कहाँ पर अपनी बुद्धि को यूज करना है, कहाँ पर बहुत शॉर्टकट रास्ते से जाकर के अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि विस्तार में जाने से भी शक्तियां नष्ट होती हैं। अगर हम उसको सार में ले आते हैं तो भी शक्तियां हमारी जमा होती हैं। ये भी बाबा ने बहुत अच्छा अभ्यास कराया है। तो बात जो चल रही थी बचत की स्कीम, जमा का खाता कैसे बढ़े, तो शॉर्टकट रास्ते की बात चल रही थी। अगर कोई लंबे रास्ते पर चला जाए और उसको वापस आना पड़े तो बहुत समय और शक्ति व्यर्थ चली जाती है। तो अगर हम भी कोई विस्तार की बातों में चले जाते हैं, सार को नहीं समझते हैं, तो हमारी शक्तियां बहुत खर्च होती हैं। और अगर शॉर्टकट पुरुषार्थ करने का रास्ता अपना लेते हैं तो शक्तियां जमा हो जाती हैं। कुछ दिन पहले बाबा का ही संदेश आया था, शॉर्टकट पुरुषार्थ क्या है। कोई भी बात आती है, मनसा में आती है पहले, और मनसा में ही अगर चेक कर लिया जाए वाणी और कर्म में आने के पहले, तो बहुत खजाने बहुत शक्तियां बच जाती हैं, स्वयं को हम सहज परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा ने हम सबको शॉर्टकट रास्ता बताया है कि बातों का विस्तार समय पर समय बढ़ता जाएगा। बहुत सी बातें जब संगठन बढ़ते हैं, परिवार बढ़ता है, भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माएं आती हैं, जैसे बाबा ने अभी भी बताया कि कितने प्रकार के बच्चे हैं, कोई ज्ञान योग के इंटरेस्ट वाले हैं, कोई सेवा के इंटरेस्ट वाले हैं, कोई खिटखिट से किनारा करके समर्पित हो गए हैं, चलो दुनिया में तो बहुत खिटखिट है, बहुत समस्याएं हैं, इससे बाबा की सेवा में लग जाओ। तो इसमें भी वैरायटी है, भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा देखता है। इसी प्रकार जैसे जैसे संगठन और परिवार वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आएंगी। अगर उसमें हमें सार स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास है, विस्तार में जो हमारे काम की बात है उस पर हम ध्यान देते हैं, जितना काम की बात है, जितना हमारे फायदे की उन्नति की बात है, अगर हमारा ध्यान उस बात पर जाता है तो हमारे संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना बच जाता है। इस प्रकार अगर हम इसके सार रूप में जाते हैं तो एक अंतर्मुक्ता का अभ्यास, बाह्य मुक्ता से शक्तियां नष्ट होती हैं, और जितना जितना जो आत्माएं अंतर्मुखी रहना जानती हैं, अभ्यास कर लेती हैं, समय का खजाना, संकल्प का खजाना और वायुमंडल से सहज ही बच जाती हैं। बाह्य मुक्ता जैसे शक्तियां नष्ट करती है, ऐसे अंतर्मुक्ता शक्तियों को जमा करती है। और दूसरी बात है, जैसे उत्तेजना से शक्तियां नष्ट होती हैं, कई बार हम लोगों ने सुना है कि जब हम उत्तेजित होते हैं तो हमारी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों उसी समय बहुत फास्ट गति से नष्ट होने लगती हैं, और कोई भी क्षण ऐसे आते हैं हमारे सामने जो न चाहते भी उत्तेजित कर देते हैं, शरीर को भी उत्तेजित कर देते हैं, मन को भी उत्तेजित कर देते हैं, चाहे किसी कमजोरी के वश, विकार के वश, या किसी की बातों के प्रभाव के वश, और वो उत्तेजना हमारी शक्ति को नष्ट करती है। अगर उसी समय हम धैर्यवत होकर शीतल होकर उस बात का निर्णय लेते हैं तो वो शक्ति बच जाती है। इसलिए आवेग और उत्तेजनाएं हमारी शक्तियों को नष्ट करती हैं, और जो बहुत समय से उत्तेजित नहीं हुए हैं, चाहे वो काम विकार का उत्तेजना हो या क्रोध की उत्तेजना हो, अगर ये उत्तेजना हमारी शांत और शीतल होती जा रही है तो शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियां हमारी जमा होती जाती हैं, और वो शक्तियां जितनी जमा होती हैं वो हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से, वो हमारे कर्म से दिखाई देने लगती हैं। तो इसके लिए पांच बातें जो हमने अपनी बचत स्कीम में सोची है, जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। एक है अनुशासन की मर्यादा। अनुशासन जो बाबा ने हमें बताया है, जो मर्यादाएं बताई हैं, अगर हम उसके बांध के अंतर्गत जितने प्रकार के अनुशासन बाबा ने सिखाए हैं, ये कोई हमें हमारे ऊपर शासन करने के लिए नहीं है, लेकिन जो श्रीमत कहती है, जो श्रीमत की मर्यादा है, अगर उस प्रमाण हमारे हर कर्म हर कदम चलते हैं तो हम अपने बचत खाते को जमा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अनुशासन के बारे में तो आप सब जानते हैं, विस्तार अगर हम करेंगे तो मर्यादाओं की बात आ जाएगी, लेकिन सार रूप में हम आपको बताते हैं। एक है अपने चिंतन अथवा विचारों का अनुशासन, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। इसका हम बहुत बड़ा विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सोचने को हमें मिलता है, खुराक बहुत कुछ है, दुनिया के अंदर भी है, ज्ञान में भी है, कारोबार में भी बहुत सी बातें हैं जो चिंतन को प्रभावित करती हैं। अगर इसका हम एक छोटा सा चार्ट बना लें कि मुझे क्या चिंतन करना है क्या नहीं, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, किस पर हमारे विचार चलने चाहिए किस पर नहीं चलने चाहिए, और उसमें भी जो हमारे सकारात्मक चिंतन के फायदे की बातें हैं, हमारे लाभ की बातें हैं, जिससे हमें अपनी उन्नति हो, ऐसे विचारों को हम ग्रहण करें और उसका चिंतन करें। और दूसरा अनुशासन में आता है चरित्र। अगर हमारा चरित्र जिस पर कोई की आंच ना आए, किसी की आंख ना उठे, हमारा उस पर ठीक ठीक धारणा युक्त जीवन चल रही है, मर्यादा के अंतर्गत हम चल रहे हैं, तो हमारी बहुत सी शक्तियां बचती हैं। और अगर हमारा चरित्र कहीं पर भी कोई उस पर आंख उठाता है, अंगुली उठाता है, कोई उस नजर से देखता है, तो हमारे भी संकल्प व्यर्थ जाते हैं और दूसरों के संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। तो चरित्र हमारा कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है, कितना ऊंचा है, इसका एक छोटा सा चार्ट हम बना करके अपने पास रखें। और तीसरी बात है व्यवहारिक जीवन की, व्यवहार में हमारी कितनी मधुरता है, कितनी सरलता है, और कैसे हम आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके व्यवहार में आते हैं, सम्मान युक्त व्यवहार है। तो अनुशासन में तीन बातों का अगर हम चार्ट बना लें, चिंतन का, चरित्र का और अपने व्यवहार का, तो बहुत अच्छी बचत हम अपने संकल्पों की, समय की और बोल की कर सकते हैं, शक्तियों की कर सकते हैं। और दूसरी बात है जो बाबा ने इस बार बहुत अंडरलाइन कराई है, बच्चे नम्रता, नम्र चित्त स्थिति बने, क्योंकि जहां पर थोड़ा सा भी अहंकार होता है वहां पर मान देना दूर है, बहुत व्यवहार में कटुता आती, संबंधों में बहुत टकराव होते हैं। और जो आत्माएं अनुभवी होंगी, किसी से भी थोड़ा सा टकराव ले लो, टकराव का परिणाम बहुत सी शक्तियां उसके पीछे नष्ट हो जाती हैं। और जिसका किसी से भी टकराव नहीं है, हमने अपने संगठन में, मधुबन के संगठन में भी देखा है, कोई थोड़ा सा भी टकराव ले लेता है आपस में, तो टकराव के कारण, और टकराव का कारण होता है थोड़ा सा अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, किसी भी प्रकार का अहम, नम्रता की कमी। अगर नम्रचित आत्मा रहती है, झुकना जानती है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना जानती है, सहनशील होकर के रहती है, मधुर होकर के रहती, नम्रता के अंदर ये सब गुण अपने आप आ जाते हैं, तो नम्रता हम सबको टकराव से बचा देती है, उलझनों से बचा देती है, और वो बचत हमारे संकल्पों को, शक्तियों को जमा करने में मदद करती है। और तीसरी बात है, हमारा यज्ञ जो चल रहा है, बाबा का घर जो चल रहा है, वो विश्वास पर चल रहा है। आप सबने नोट किया होगा, हम सब देखते हैं कि दादियों का, बड़ों का हमारे पर इतना विश्वास हो गया है कि जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इतना हम विश्वास पात्र बन जाएं, इतने ईमानदार होकर के यज्ञ की सेवा करें, जहां पर भी हमें सेवा मिले, एक धन की ईमानदारी, जो हमारे हाथ में धन आता है, जो हमारे हाथ में पैसा आता है खर्च करने को, एक उसकी बहुत बड़ी ईमानदारी चाहिए, और दूसरे अपने जो चिंतन चरित्र की बात है उसकी भी ईमानदारी चाहिए। विश्वास बैठ जाए लोगों का कि ये व्यक्ति जहां पर रहेगा इसके चरित्र पर कभी भी धोखा उंगली नहीं उठेगी, बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो धन और चरित्र, ये दो बातें इसमें भी आती है, ईमानदारी में। जो इस संगठन के बीच में बड़ों का विश्वास जीत लें, अपनी निमित्त आत्माओं का विश्वास जीत लें कि ये जो करेगा, जहां जाएगा वहां ये सफल होकर के आएगा, बचत करके आएगा, व्यर्थ नहीं करेगा, तो ईमानदारी का एक लक्षण बचत में, बचत के खाते में बहुत मदद करता है। और तीसरी बात, चौथी बात है अंदर की वृत्तियों में त्याग। आखिर भी हम सबको क्या चाहिए, सब कुछ बाबा ने दिया है। त्याग वृत्तियों के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा त्याग यही है कि हम अपने प्रति कम से कम खर्च करें। सब कुछ प्राप्त है, सब साधन प्राप्त हों, सब चीजें सेवा केंद्र पर हों, सेंटर पर हों, यज्ञ में हों, लेकिन समर्पित भाई बहने अगर इस बात का लक्ष्य रखते हैं, किसी से भेंट नहीं करते हैं कि इसके पास ये साधन है, इसके पास ये सुविधा है, मुझे भी मिलनी चाहिए, मैं जितना कम से कम खर्च में अपने आप को चला सकूं, त्याग की अंदर की वृत्ति है। इसमें अनासक्त वृत्ति भी आ जाती है, और अंदर की त्याग वृत्ति जिसमें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मान भी नहीं चाहिए, शान भी नहीं चाहिए, मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मुझे आगे सीट दी जाए, मुझे पूछा जाए, मुझे कोई सम्मान दिया जाए, उसकी भी इच्छा अंदर से नहीं, उसका भी त्याग है। तो अगर हमारी वृत्तियों में त्याग अंदर से हम कर लेते हैं तो कभी भी ये संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाते हैं कि ये प्रोग्राम हुआ, ये कार्य हुआ, ऐसा हुआ, मेरे को क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि तो इसमें बहुत से संकल्प बहुत आत्माएं व्यर्थ करती हैं। लेकिन अगर हम इसमें संतुष्ट मणि बन करके रहते हैं, जो चांस मिलता है, हमने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा है कि चांस मिलता है वो हमें अवश्य लेना है, उसमें नानू नहीं करनी है, उसमें हमें बहाने नहीं करने हैं, क्योंकि हम नहीं लेंगे तो अनेक लेने वाले पैदा हो जाएंगे, हैं। हमें अगर मिलता है तो हम लें, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हम ये इच्छा नहीं रखें कि हमें मिलना चाहिए, मिल गया तो हम छोड़ते नहीं है, और नहीं मिलता है तो मांगते नहीं है। अगर ये हमारी अंदर की त्याग वृत्ति है तो हम देखते हैं कि हमारी संकल्प शक्ति या बोल की शक्ति, नहीं तो बहुत कमेंट्स, बहुत बोलचाल चलता है कि बहन जी इसी को क्यों पूछती हैं, इसी को क्यों आगे बढ़ाती, मुझे क्यों नहीं करती, मुझे चांस क्यों नहीं मिलता, क्या मैं योग्य नहीं हूं। अगर संगठन में देखा जाए किसी को अच्छे अच्छे चांस मिले और किसी को न मिले, तो कोई के संकल्प बहुत चलेंगे और कोई के संकल्प, जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं जो समझती हैं कि जो सेवा मिलती है उसमें अपना भाग्य है, जिस प्रकार की सेवा मिलती है अगर हम दिल से लगन से करेंगे, अपना भाग्य बनाएंगे, तो उनका भाग्य अपने आप बनता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन अंदर की वृत्तियों में संपूर्ण त्याग की भावना रहे, मिल गया तो जरूर लो, चाहे सेवा का चांस मिलता है, प्रदर्शनी साथ समझाने का चांस मिलता है, क्लास कराने का चांस मिलता है, कहीं जाने का चांस मिलता है, भाषण करने का चांस मिलता है, क्यों नहीं लें, लेकिन ले तब सकेंगे जब अपने पास स्टॉक है, खजाना है, जमा है। ऐसा नहीं चांस मिले और कहें भाई आपने तो दादी बोल दिया हमको, दीदी बोल दिया हमको, इस टॉपिक पर क्लास कराओ, इस टॉपिक पर भाषण करो, मेरे तो तैयारी नहीं है, अब मेरा आज क्लास नहीं था, सही बात है, आज मेरा क्लास नहीं था, आज सूरज भाई का क्लास था। अब बहन जी मेरे को सुबह सुबह कहती हैं आपको क्लास कराने आना, हमने क्या क्लास कराना है मेरे को, मेरा कल तो कल बताया था आपने, नहीं आज ही कराना है। अगर हमारी कुछ अंदर की पहले से तैयारी, कुछ हमारे पास स्टॉक है किसी भी क्षेत्र में, हमने अपनी बचत की हुई है, अपने चिंतन को उस ओर मोड़ा हुआ है, तो कोई भी चांस मिलता है उसमें हम ना नहीं कर सकते। हाँ जी करेंगे, चलो बाबा अपने आप करा लेगा, बाबा तो हमारे साथ है ना, भले हमने कोई चिंतन और कुछ न किया हो लेकिन बाबा को तो हम साथ रखते हैं। एक बार बाबा की बहुत अच्छी बात थी, आप सबको याद होगी, कि जब एक खिलौना साइंस के साधनों का खिलौना बना हुआ विद्युत शक्ति के आधार से नाच सकता है, डांस कर सकता है, तो क्या आप बच्चों को मैं सर्वशक्तिमान डांस नहीं करा सकता हूं, इस मुख से नहीं बुला सकता हूं? तो कभी भी संकोच की भावना नहीं कि मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या कहूंगा, मुझे अंदर तो कुछ है ही नहीं। चिंतन अच्छा है, लाइन क्लियर है, संबंध बाबा से अच्छा है, बाबा अपने आप कराता है। तो त्याग वृत्ति से अपने आप हमारी शक्तियां जमा होती जाती हैं। डॉक्टर मुकेश कोई है यहाँ पर? मुकेश वो है कर्म योगी स्थिति। इस पर बहुत बहुत ध्यान हम सबका चाहिए, क्योंकि हम सब कर्म कर रहे हैं और कर्म के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। हमें तो ये लगता है कि मुझे जिस दिन सेवा नहीं होती उस दिन बोझ हो जाता है। जैसे पहले मैं सुना रहा था कि सेवा के बिना मैं नहीं रह सकता, ऐसा नहीं, लगाव है सेवा से, कोई हम इसके बिना जी ही नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कोई ना कोई सेवा जरूर चाहिए। और वो सेवा कभी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, और अगर मान लो उसमें कमी सेवा करने वाले बहुत आ जाते हैं, करो ठीक है उनको भी हम चांस देते हैं, आप कर लीजिए, कम से कम योग की मनसा संकल्पों की, शुद्ध वृत्तियों की, वायुमंडल बनाने की भी तो सेवा है। हम अपने संकल्पों को फ्री न छोड़ दें, अगर हमारा ध्यान है अपने संकल्पों पर, तो हम अपनी शक्तिशाली मनसा से, अपनी श्रेष्ठ और ऊंची स्थिति से अपने चारों ओर, अपने वायुमंडल, अपनी वृत्तियों से वायुमंडल बनाने की सेवा करें। कर्म भी आ जाएगा उसमें, योग भी आ जाएगा। कर्म छोड़ करके भी हम योग नहीं करते हैं। अभी अभी 10 बजे दादी गुलजार से हमने बात किया, दादी याद कर रही हैं, बाबा का संदेश नहीं आया है। दादी कहती अच्छा मैं लिख रही हूँ, मैं भेजती हूँ, अभी आप तैयार रहना, मैं भेज रही हूँ। और दादी कहती है तुम क्लास कराने जा रहे हो, मेरे को टाइप करके दे के जाना, ऐसे नहीं जाना। बना कि थोड़े समय के अंदर भी मुझे अपने आप को तैयार करना है, और जब सेवा मिल जाए हाँ जी एवर रेडी, ना नहीं कर सकते हैं। हमने एक बहुत अच्छा लेसन सीखा है कि अगर कोई योग्यता अपने जीवन में लानी है, कोई भी योग्यता अपने जीवन में लानी है, तो हाँ जी का पाठ अवश्य पक्का होना चाहिए। हाँ जी किया और अपने आप योग्यता आ जाएगी। काम तो अपने आप बाबा कराता है और समय पर हो जाता है, उसी समय फैक्स आया, उसी समय टाइप हुआ, उसी समय दादी जी को दिया, और उसी समय क्लास कराने टाइम पर आ गया, आधा घंटे के अंदर सब कुछ सर्किल चला। अगर मैं कहता मेरे को तो क्लास कराना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में आके कर दूंगा, दादी कुछ नहीं कहती, कहती अच्छा चलो मैं कल सुना दूंगी। लेकिन ये हां जी करने की आदत है, सब काम बाबा करा लेता है। तो अगर हम सबको कर्म योगी बनना है, तो कर्म में योग तभी रह सकता है जब हम हां जी करना सीखें, जब हमारे अंदर एक बाबा के प्रति दिल का प्यार यज्ञ के प्रति हो, सेवाओं के प्रति, सेवाओं के प्रति सच्चे दिल का प्यार है, करने की भावना है, और हम हां जी कर लेते हैं, बाबा अपने आप करा लेता और हम करके दुआएं ले लेते हैं। इसलिए हम सभी इन 5 बातों को अगर अपने जीवन में अपना करके चलेंगे, तो हमारी बचत की स्कीम में बहुत कुछ खजाने जमा होते जाएंगे, बचते जाएंगे, और व्यर्थ से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। व्यर्थ तभी आता है जब हम बुद्धि को फ्री रखते हैं, जब हम अपने आप को फ्री रखते हैं। अगर हम ज्ञान, योग, सेवा, इन सब में बुद्धि को, मन को व्यस्त कर देते हैं, तो हमारी सब शक्तियां बच जाती हैं। ओम शांति।
बाबा जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।